हे देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेयपरं अवाप्स्यता. The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you. Thus, nourishing one another, there will reign general prosperity for all.
देवता जो है जब आपके यज्ञ से प्रसन्न होंगे तो वह आपको भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह से जो है एक दूसरे का आप पोषण कर सकते हैं.
In this particular sloka from the third chapter of Bhagavad Gita, Krishna is explaining that if we please the demigods by performing proper sacrifices, they will provide great prosperity in our lives.
इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर हम उचित यज्ञ कर कर देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो वो हमारे जीवन में समृद्धता प्रदान कर सकते हैं.
But what is the real prosperity that all the demigods want to give us?
लेकिन सच्ची समृद्धता क्या है जो कि सारे देवता हमें प्रदान करना चाहते हैं?
It is said in Bhagavad Gita, Abhrama Bhuvana Loka Punar Avartan Arjuna Mamupetyatu Kaunteya Punar Janmana Vidyate. That even the demigods living in the highest planets to the point of Brahma, down to the insignificant ants, and lower to the infernal regions of existence, they are all miserable because everything is temporary that the demigods provide.
भगवान कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर नीचे चींटी तक जो सब जगह स्थान है वो दुखदायी हैं क्योंकि वो सब जो है क्षणिक हैं और कुछ समय के लिए ही रहते हैं.
Although the demigods could easily provide us great material prosperity, as devotees of the Lord, their real aim is to give us real treasure of Krishna consciousness.
हालांकि देवता जो है भौतिक समृद्धि दे सकते हैं हमें, लेकिन भगवान के भक्त होने के नाते वो वास्तव में हमें कृष्ण भावना देना चाहते हैं.
In this regard, I would like to narrate a beautiful story.
इसके संबंध में हम एक सुंदर कथा बताना चाहेंगे.
In this age of Kali Yuga, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who is called upon by many names in many religions, appears in his original transcendental nature as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu.
इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जिनके अनेक नामों से जब पुकारे जाते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं.
दिस कैन बी प्रूवन बाय साइटिंग द वेदस एंड बाय हियरिंग फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट डिवोटीज.
ये जो है वैदिक शास्त्रों से और भगवान के भक्तों से श्रवण करने से जाना जाता है.
व्हेन श्री चैतन्य महाप्रभु वाज इन हिज यंगर एजेस ही डिड नॉट येट रिवील हिमसेल्फ टू बी द सुप्रीम गॉड.
जब चैतन्य महाप्रभु एक बालक थे तो उस समय वो अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं किए.
But rather, he appeared to be the greatest of all scholars.
वो तो ऐसे लग रहा था कि वो भगवान के रूप नहीं थे.
Although he was just a young boy in his teenage years, his scholarship was so great that nobody could comprehend how it was possible.
हालांकि वो एक बहुत ही नवयुवक व्यक्ति थे लेकिन उनकी विद्वत्ता इतनी थी कि कोई व्यक्ति समझ नहीं पा सकता था कि वो कैसे संभव है.
इन दोज डेज नवद्वीप वाज द हाई सीट ऑफ लर्निंग फॉर द होल वर्ल्ड इन वैदिक स्टडीज.
वैदिक शास्त्रों में उस समय नवद्वीप को बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वता का केंद्र माना जाता था.
एंड द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड स्टडीड एंड टॉट देयर.
वहां पर जो है सारे विद्वान जो है वहां पर आते थे.
Bhattacharya, Mishra, all these high titles were prominent throughout the land of Navadvipa.
ये जो टाइटल्स हैं भट्टाचार्य या मिश्रा ये सब नवद्वीप में बहुत प्रचलित थे।
But little knew my pundit, who was then the name of Lord Chaitanya, he was such a scholar that whoever he would challenge in debate, he would defeat them within seconds.
लेकिन निमाई इतने बड़े विद्वान थे कि जिसको भी वो चुनौती देते थे वो उसको तुरंत जो है हरा देते थे।
This was the all-pervading pastime of every scholar in Navadvip was to try to defeat one another in debate.
नवद्वीप में यही सब जो है लीला करते थे विद्वान कि वो एक दूसरे को हराने का प्रयास करते थे।
In these days, the greatest of all scholars who were famous throughout the world was a man named Keshava Kashmiri.
और उस समय जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी।
He was awarded the highest title of Digvijay.
उनको सर्वोच्च उपाधि दी गई थी कि दिग्विजयी नाम के।
This means one who has traveled throughout the whole world and defeated everyone.
इसका मतलब यह है कि जो पूरे दुनिया में भ्रमण कर चुके हैं और सबको हरा चुके हैं।
This Digvijay was a very great devotee of the demigoddess Saraswati.
ये जो है सरस्वती जी के बहुत उच्च स्तर के भक्त थे।
He pleased her so much by his intense efforts to study as well as by offering sacrifices and worship to her and chanting her special mantra.
उन्होंने बहुत प्रसन्न किया उसे उनके लिए यज्ञ करने के लिए और उनके जो मंत्रों का गान करके।
It is described in all the world Digvijay was the most favorite of all the devotees of goddess Saraswati.
Saraswati ke sare bhakton mein sabse zyada mashhoor jo hai ye Digvijay the.
And therefore she gave him such power that his scholarship was unfathomable.
To isliye usne unko itni shakti di ki unki vidwata ko koi kalpana hi nahi kar sakta tha.
It was superhuman.
Wo ek ati manaviya tha.
Whenever he would speak, goddess Saraswati would appear on his tongue and speak through him.
जब भी वो बोलते थे तो स्वयं सरस्वती देवी उनकी जीवा पर प्रकट होकर उनके द्वारा बोलती थी।
He could speak every single part of the Vedas without even thinking twice.
वो वेद का हर एक भाग बोल सकते थे बिना कुछ दूसरी बार विचार किए हुए।
He could compose poems and verses immediately that were so eloquent and perfectly structured and full of wisdom.
और उन्होंने ऐसे कविताएं जो है रचना की थी जो कि बहुत ही सुंदर थे।
He could compose perfect Sanskrit verses which were so eloquent that no other man but himself could even understand them.
वो ऐसे श्लोकों की रचना करते थे कि कोई व्यक्ति समझ भी नहीं पाता था उनको।
And it was known throughout the world amongst all scholars that Digvijay was the special devotee of Saraswati and he had received the greatest blessings from her.
और सब पूरे दुनिया में सबको मालूम था कि वो सरस्वती के विशेष भक्त हैं और उन्हें उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त है।
Therefore, wherever he went, other scholars would just bow down in defeat.
और जहां भी जाते तो सारे विद्वान जो है उनसे हार जाते थे।
और उनको He went to the east, to the west, to the north, to the south, all directions, challenging in every neighborhood. Could anyone defeat my arguments? Will anyone challenge me? And wherever he went, all the great scholars would bow at his feet in surrender.
वो पूर्व में गए, पश्चिम में, दक्षिण में और उत्तर में, और सब जगह जाकर चुनौती देते कि कोई है तो मेरे से लड़े। और इस तरह से जहाँ भी वो जाते, सब लोग जो है उनके चरणों में झुक जाते थे।
By the power of this opulence that Saraswati Devi gave him, he became so influential, so famous, and so fabulously wealthy.
वो इस शक्ति के कारण इतने मशहूर हो गए और इतने ज़्यादा धन समृद्ध हो गए।
And he decided, after going throughout the world, undefeated in victory, he would last come to Navadvip, the highest place for scholarship.
उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि सब जगह पर हराने के बाद वो नवद्वीप पहुंचेंगे जो कि विद्वता की सर्वोच्च स्थान मानी जाती है।
And when he came to Navadvip, he came with a whole procession of elephants and horses and so many pundits chanting slokas by foot and palanquins and great royal opulences.
जब नवद्वीप में उन्होंने प्रवेश किया तो बड़े जो है राज वैभव के साथ हाथी घोड़े और कई पंडित जो है श्लोकों का गान करते हुए उनके आगे पीछे चल रहे थे पालकियों में.
When the scholars of Navadvip heard he had come, they shuddered in fear.
तो जब वहां के विद्वानों ने यह देखा कि वो पहुंचे हैं तो वो डर के मारे जो है घबरा गए.
They were thinking that Navadvip is famous. When he comes, he will defeat us all and Navadvip will be finished.
वो ऐसे सोचने लगे कि नवद्वीप तो इतनी प्रसिद्ध राजधानी है लेकिन जब ये आएंगे तब नवद्वीप जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा.
We have heard that he has been blessed with the special benediction of goddess Saraswati. Whenever he speaks, she appears on his tongue. So how could any of us who are mere humans possibly combat him in debate?
तो वो बोलने लगे कि हमने सुना है कि जब भी वो बोलते हैं तो स्वयं सरस्वती उनकी जीवा पर प्रकट होती है तो हम में से कौन उनसे लड़ सकता है.
Everyone was fearful, feeling shameful, and the whole Navadvip Dham was in great confusion, talking about Digvijay's arrival.
Digvijay के आने के बाद सुनकर पूरा नवद्वीप धाम जो है बिल्कुल भ्रमित सा हो गया था क्योंकि सब डर रहे थे और शर्मा रहे थे.
And like most people in this world who get great material power, they become very proud.
ये ऐसे होता ही है कि जिसको भी एक शक्ति मिलती है वो अभिमानी हो जाता है.
And he was not in the least an exception of this rule.
और वो इस नियम के कोई जो है कोई अतियोक्ति नहीं थी.
So at that time Nimai Pandit, he was actually teaching children grammar and various other subjects.
उस समय निमाई पंडित जो है बालकों को व्याकरण और दूसरे विषय सिखाते थे.
So one day his students approached him and they told him that the Digvijay Pandit has arrived in Navadvip with his elephants and his horses and his chariots and his palanquins and so many men in a grand procession. It is said that this Digvijay Pandit, Saraswati goddess, speaks through him and he's come to defeat all the scholars of Navadvip.
तो एक दिन जो है उनके छात्र आकर उनसे बताने लगे कि ऐसे ये दिग्विजय कश्मीरी आए हैं और ये जो है हाथी घोड़े सबके साथ में आए हैं और ऐसा बताया गया है कि स्वयं सरस्वती उनके जिह्वा से बोलती हैं.
And Nimai Pandit replied to his students with a very sweet and charming smile upon his beautiful face that please hear my words.
तो निमाय पंडित जो है अपने सुंदर मुखमंडल पर जो है एक मुस्कुराहट देते हुए बोले मेरे शब्दों को सुनो.
The Supreme Personality of Godhead never tolerates too much arrogance in a human being.
वो बोले कि भगवान जो है किसी भी मानव में अभिमान कभी सहन नहीं कर पाते.
When the Lord sees that a person becomes too much proud by his material capacities, the Lord takes those capacities away and shatters his pride.
जब भगवान देखते हैं कि किसी के पास भौतिक कोई उपलब्धि है और उसे अभिमान हो गया है तो भगवान को छीन लेते हैं जिसका अभिमान चूर चूर हो जाता है.
He said the characteristics of a good tree that has good fruits is it bows down very low.
एक अच्छे पेड़ के जिसके अच्छे फल हों उसका लक्षण यह है कि वह बहुत नीचे झुकता है.
And similarly, the characteristics of a person who has good qualities, he always bends himself very low in a mood of humility before God and all living beings.
तो ये बताया जाता है किसी तरह से जिसमें अच्छे गुण होते हैं वो बहुत नम्र होता है और वो हमेशा भगवान और सबके सामने झुकता है.
Nimai Pandit said that before this great scholar leaves Navadvip Dham, Lord Krishna is going to teach him a good lesson.
वो बोले निमाय पंडित कि इससे पहले कि वो नवद्वीप धाम छोड़कर जाए भगवान उसे एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाले हैं.
And then the Lord said to his students, "Now let us go to have our lessons."
तो भगवान बोले अपने छात्रों से कि चलो अब हम अपने जो है शिक्षण करने के लिए जाएंगे.
So very playfully and happily they all went along with Nimai to the Ganges and the Lord bowed down to the Ganges and sprinkled some water upon his head and sipped the sacred waters And all of his students did the same. And then they sat down on the bank.
और फिर सब छात्रों सहित जो है भगवान एवं छात्र जो गंगा जी के किनारे गए और थोड़ा पानी जो है गंगा जी का आचमन किया.
And Nimai Pandit began to think within his own mind.
Nimai Pandit अपने मन में सोचने लगे.
That if I defeat this scholar who is challenging everyone to public debate in public in front of others, then he will be so humiliated, he will be put to such shame that he will die.
वह सोचने लगे कि अगर सबके सामने मैं इसको हरा दूंगा तो इसकी इतनी बेइज्जती होगी, इसको इतनी शर्म आ जाएगी कि वो मर जाएगा.
It is said for a man who has been honored, dishonor is worse than death.
ऐसा बताया जाता है कि जिसको मान मिला हो उसको जो है अनादर करने से उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर होता है.
So the Lord was thinking that I must defeat his pride and take away all of his sense of prestige without in any way dishonoring him before others.
भगवान सोचे कि इसका मुझे जो है मान चूर्ण करना है बिना सबके सामने उसकी बेइज्जती किए.
Just at that time, the Digvijay Pandit came to the bank of the Ganges.
उसी समय केशव कश्मीरी दिग्विजय जो है वो गंगा जी के तट पर पहुंचे.
And he saw the beautiful, beautiful form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu.
और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर स्वरूप देखा.
It is explained that the Lord was sitting with his students with his beautiful, beautiful, shining golden complexion.
ऐसा बताया जाता है कि भगवान अपने छात्रों के सम्मुख बैठे होते हैं और उनका सुंदर जो है रूप होता है.
Which radiated with the most illustrious, soothing light.
और उनके शरीर से जो है बहुत ही सुंदर प्रकाश निकल रहा था.
And his beautiful lotus-like eyes, wherever they cast their glance upon, that person or that thing received the ultimate blessings of life.
और जहाँ भी वो अपने जो है आंखें दृष्टि जलाते थे उनको जीवन का जो है सबसे बड़ा वरदान मिल जाता.
And his wonderful lips, which were red like the rising sun, were smiling so charmingly.
और उसके होंठ जो है उदय होने वाले सूर्य के समान थे और बहुत सुंदर रूप से जो है मुस्कुरा रहे थे.
And there was a sacred thread hanging loosely around his beautiful broad shoulders.
और उनके जो है शरीर से जो है सुंदर जनेऊ दिखाई पड़ रहा था.
And his dhoti was tied very artistically.
और उनकी धोती बहुत सुंदर ढंग से जो है बांधी गई थी.
And his beautiful, beautiful black hair was cascading down his wonderful back.
और उनके जो है सुंदर जो है बाल थे.
When Digvijay saw him, not only was he attracted by his beauty, but he became fearful in his presence.
जब दिग्विजय ने ये देखा तो न केवल वो आकर्षित हुए बल्कि वो थोड़ा सा डरने लगे.
And this was something that had never happened before.
वो सोचे कि ऐसा तो कभी मैंने देखा या सुना नहीं है पहले.
Keshav Kashmiri was so confident of Goddess Saraswati's support and blessing that he was fearless wherever he went. But when he stood before the Lord, he felt insignificant and fear entered his heart and he felt awesome and great reverence and respect.
Keshav Kashmir jahan bhi jate the unko pura vishwas hota tha, lekin jab Chaitanya Mahaprabhu ke samne aaye to unko dar lagne laga aur wo jo hai aadar purvak jo hai dekhne lage.
He was thinking, is this the Nimai Pandit I have heard about?
सोचे क्या ये वही निमाई है जिसके बारे में मैंने सुना है.
And he asked one of the students, and they said, yes, this is Nimai Pandit.
जब उन्होंने अपने छात्रों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये वही निमाई है.
And Nimai saw him, and with great respect, he received him and offered him a seat.
निमाई ने उनको देखा तो बड़े जो है आदर से उनको बैठने के लिए आसन दिया.
And then Nimai said, you are so famous throughout the world as the great servant of Saraswati, receiving such blessings and benedictions from her. And we have heard about your prowess to recite poetry like no one else. Please, we request you, compose a poem glorifying the Mother Ganges, so that when we hear it, we will be free from all sins.
तो निमाई पंडित उनसे कहने लगे कि हमने सुना है कि आप बहुत एक प्रख्यात विद्वान हैं, तो आप कृपया गंगा जी के गुणगान में एक सुंदर कविता की रचना करें जिससे सुनने से सब लोग पवित्र हो जाएं।
And Keshav Kashmiri, very proudly, he began to speak.
और केशव कश्मीरी बड़े अभिमान के साथ बोलने लगे।
And such beautiful, beautiful poetry began to flow from his mouth.
और उनके मुख से जो है बहुत सुंदर कविता निकलने लगी।
Each word was perfect. Each sentence was so sweetly decorated with all of the ornaments of grammatical beauty.
और उनका हर एक शब्द जो है पूर्ण था और हर एक जो जो लाइन थी वो बिल्कुल कविता के सब गुणों से ज़्यादा भरी हुई थी।
And each sloka was so full of deep, deep wisdom. And meaning.
और हर एक श्लोक जो है बहुत ही ज्ञान और विद्वता से भरा हुआ था।
It was like the Ganges herself flowing from his mouth.
ऐसा लग रहा था मानो गंगा ही खुद उसके मुख से निकल रही हो।
As he spoke without even the slightest hesitation, it was like the rumbling of thunder.
और वो बिना हिचकिचाहट के बोल रहे थे मानो जो है बादल की आवाज आ रही हो।
And when the children, students of Nimai heard him, their mouths dropped open. In astonishment.
और जब छात्रों ने देखा तो उनका मुंह जो है बिल्कुल अवाक से खुला ही रह गया आश्चर्यचकित होकर।
They cried out, "Oh Rama, how is it possible for any human to compose and recite such poetry like this?"
वो बोलने लगे कैसे संभव है कि किसी मानव को ये कविता की रचना करना?
And he went on without stop, and it appeared that he could go on forever reciting new and newer and newer verses.
और वो बिना रुके बोलते गए और ऐसे लगा कि वो हमेशा के लिए ऐसे नए नए श्लोक गाते रहेंगे बनाते रहेंगे।
For over one full hour.
पूरे एक घंटे के लिए वो इस तरह कविता रचना करते रहे।
And then he ended.
और फिर उनका उन्होंने समाप्त किया।
And Nimai Pandit, very sweetly and with great encouraging feelings, he said, "This poem was so beautiful, so wonderful." So well decorated with metaphors and other sorts of ornaments, literary ornaments. It is so highly scholarly, these verses, that only you can understand them.
वो कहने लगे कि आपकी ये कविता इतनी सुंदर है, इतने आभूषणों से भरी हुई है कि सिर्फ आप ही इसको समझ सकते हैं.
And only you have the power to interpret them.
और आप ही इसका जो अर्थ बतला सकते हैं.
But I ask you. To kindly analyze these wonderful poems that you have composed.
मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया उस इसमें से जो है उसका अर्थ हमें बताइए.
And Digvijay very proudly was thinking, ah, yes.
Digvijay बड़े अभिमान से कहने लगे, हाँ.
And he began to analyze.
और वो उसका अर्थ समझाने लगे.
But just when he began, the Lord said, "Please analyze not only the good points, but also the faults."
और जैसे वो शुरू करने लगे तो भगवान ने कहा न केवल उसके अच्छे गुण बल्कि उसमें दोष हैं वो भी बताइए।
Because there were faults in the beginning, in the middle, and in the end.
क्योंकि शुरुआत में मध्य में और अंत में दोष हैं।
We want you to explain the meaning and reasons for these faults.
और इन दोषों का भी कारण और अर्थ बताना जरूरी है।
And Digvijay Pandit was thinking. He said. My poetry never has faults.
दिग्विजय बोलने लगे कि मेरी कविता में कभी भी कोई दोष नहीं होता।
Where do you find fault in my poetry?
कहाँ तुम्हें मेरी कविता में दोष मिला?
And Nimai perfectly recited one of his 100 verses and explained the fault in it.
और निमाई ने जो है वो 100 में से एक श्लोक चुनकर उसमें जो है दोष बतलाया।
And Keshav Kashmiri said that I recited those poems like the raging wind. How did you remember one verse so perfectly?
उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल तूफान की तरह मैंने जो है श्लोकों की रचना की उसमें से कैसे आपको एक श्लोक याद हो गया?
He said, "I am Shrutidhar. Just as Mother Saraswati has given you the power to compose such beautiful verses, I have been given the power to remember whatever I hear.
तो भगवान बोले मैं श्रुतिधर हूँ, जैसे सरस्वती माता ने आपको क्षमता दी है रचना करने के लिए, मुझे जो है याद करने की क्षमता दी गई है.
And then Keshav Kashmiri began to try to explain.
और फिर केशव कश्मीरी जो है समझाने का प्रयास करने लगे.
But as he tried to explain, Nimai started finding faults in all of his explanations.
और जैसे वो समझाने लगे तो निमाई उसमें भी जो उनके समझाने में भी दोष निकालने लगे.
And at that point, Keshav Kashmiri lost all of his intelligence.
और उस समय केशव कश्मीरी अपने सारी बुद्धि को खो बैठे.
He was bewildered.
वो बिल्कुल मोहित हो गए.
He was confused.
वो भ्रमित हो गए.
He was trying to protect his prestige by saying something, and everything he would say, Nimai would explain more and more faults in it.
वो अपनी जो है प्रथा को बचाने के लिए कुछ बोलने का प्रयास करते, लेकिन जो भी वो बोलते उसमें निमाई दोष ढूंढते थे.
And when he was utterly bewildered and confused, Nimai very sweetly, with great respect, he said, "Oh, Digvijay Panditji, put that poem aside and please recite another poem for us."
तो उसके बाद निमाई बोलने लगे कि वो कविता को भूल जाइए, अभी दूसरी कविता की रचना करिए.
And when he tried to recite another poem, not a single word would come out of his mouth.
और जब दूसरी कविता रचना करने लगे तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला.
Not a single thought would even come to his mind.
उनके मन में एक विचार भी नहीं आया.
He went blank.
वो बिल्कुल जो है खाली हो गए.
And he stood there, motionless and speechless.
वो बिल्कुल स्थिर हो गए और उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा.
And all the students began to laugh.
और सब छात्र जो हंसने लग गए.
And Nimai said, "Don't laugh, please. Do not laugh."
निमाई ने उनसे बताया कि आप हंसिए मत.
And then Nimai Pandit said, in a very gracious, respectful, and loving way, he said, "It is becoming very late now. I suggest that you return home and you have nice rest. And tomorrow, while you're home, you could read your books. And tomorrow, I will ask more questions to you."
निमाई ने बोला कि अभी बहुत देर हो रही है, अभी आप घर चले जाइए, विश्राम करिए, थोड़ी पुस्तकें देखिए, और उसके बाद फिर कल मैं तुमसे और प्रश्न पूछूंगा.
In this way, the Lord utterly defeated him, but preserved his sense of honor and dignity before others.
इस तरह से भगवान ने उसको पूर्ण रूप से परास्त कर दिया, फिर भी दूसरों के सामने उनकी मान इज्जत रखी.
He did it in such a compassionate and loving way that everyone around, even the scholars, were feeling so pleased.
और उन्होंने इतना करुणा और प्रेम से किया कि सब लोग जो है उनको भी जो है आनंद लगा.
And then Nimai with his students, they all joyfully went home.
और फिर निमाई अपने छात्रों के साथ वापस घर लौट आए.
But Digvijay just sat there on the bank of the Ganges, motionless, speechless, and devastated.
और उस समय जो है वो केशव कश्मीरी वहीं पर रहे, बिल्कुल स्थिर होकर और कुछ बोल नहीं पाए, और ऐसे बिल्कुल पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हों मानो.
Utterly humiliated and feeling himself totally helpless.
वो बिल्कुल जो है बिल्कुल उनकी इज्जत निकल गई थी और वो जो है अपने आप को निस्सहाय महसूस करने लगे.
And he began to think, what happened?
सोचने लगे मेरे को हो क्या गया.
How is this possible?
ये कैसे संभव है.
I have defeated the greatest scholars and pundits in all the world.
मैंने जो है पूरे दुनिया में बड़े बड़े जो विद्वान और पंडितों को भी हरा दिया है.
And today I was speechless. I could say nothing. I could not defend myself against the young boy who's nothing but a grammar teacher to small children.
और आज मैं जो है एक नौजवान युवक के सामने जो कि छोटे बच्चों के लिए व्याकरण का जो है शिक्षक है, उसके सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाया.
My worshipable mother Saraswati, she has always been there to speak on my tongue.
मेरी पूजनीय देवी जो सरस्वती हैं, वो हमेशा मेरी जीवा पर रहती हैं बोलने के लिए.
But today she has abandoned me.
लेकिन आज उन्होंने मुझे छोड़ दिया है.
Have I committed some offense against her?
क्या मैंने उसके प्रति कोई अपराध किया है?
In this way he was bewildered, he was confused, his mind and his heart were shattered.
इस तरह भ्रमित और मोहित हो गए और उनका हृदय जो है बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया.
And he began to chant his mantra to Goddess Saraswati. And out of exhaustion, he fell asleep.
और वो सरस्वती का मंत्र गान करने लगे और थकावट के कारण वो वहाँ पर सो गए.
And when he fell asleep, Goddess Saraswati appeared to him.
जब वो सो गए तब सरस्वती माता उनके सामने प्रकट हुए.
She looked very compassionately upon him.
उसके प्रति बहुत दया भावना से वो देखने लगी.
And she said, "Oh, listen, Brahman, I want to reveal to you something very, very confidential."
तो बोले हे ब्राह्मण सुनो मैं एक बहुत गुह्य वस्तु तुम्हें समझाने जा रही हूँ.
It is something that is undisclosed even in the Vedas.
ऐसी चीज है जो कि वेदों में भी नहीं बताई गई है.
If for any reason you tell anyone what I am about to say, you will die.
जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ अगर तुम किसी दूसरे को बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी.
That Brahman who has defeated you today is the supreme personality of Godhead.
जो ब्राह्मण ने तुम्हें आज परास्त किया है वो स्वयं भगवान है.
He is the Lord of the entire cosmic manifestation.
वो पूरे सृष्टि के जो है स्वामी है.
He is the creator, maintainer and annihilator of all that exists.
सब कुछ जो है उसके सृजनकर्ता पालनकर्ता और विनाश करने वाले वे ही हैं.
And I, the goddess Saraswati, am his eternal humble servant.
और मैं सरस्वती देवी जो है उनके नित्य नम्र सेविका हूँ.
And I am always aspiring to serve his lotus feet.
और उनके चरण कमलों की सेवा की अभिलाषा करती हूँ.
And out of shyness before the Lord and Master of my life, I could not appear on your tongue when you were standing before him.
और अपने स्वामी के जो है शर्म के कारण मैं तुम्हारी जीवा पर प्रकट नहीं हो सकी उस समय.
It is explained, she said in the Srimad Bhagavatam, that even the greatest personalities are humbled and bewildered before the Supreme Personality of Godhead.
श्रीमद् भागवत में से बताया गया कि जो बड़े से बड़े व्यक्ति भी जो हैं भगवान के सामने बिल्कुल नम्र बन जाते हैं.
Even the personified Vedas and Ananta Shesha, whose thousand mouths are always chanting glories of the Lord, even Brahma and Shiva are bewildered when they stand before the Lord.
अनंत शेष ब्रह्मा जी और शिव जी वो भी जो है भगवान के सामने मोहित हो जाते हैं.
So I'm sorry, but how can I help you under such in those conditions?
और इस स्थिति में जो है मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ?
She said, "He is the same Lord who is the source of all living beings, and he has incarnated throughout the ages as Matsyavatar, Kuramavatar."
वही भगवान है जो कि अलग अलग समय पर मत्स्य अवतार कूर्मा अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं.
He appeared as Lord Varahadev and he lifted this entire world with his tusks.
और अपने दांतों के द्वारा जो है वराहदेव के रूप में उन्होंने पूरी पृथ्वी को धारण किया.
He appeared as Lord Narasimhadev and killed the demon Hiranyakashipu and gave pleasure to Prahlad.
नरसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को आनंद प्रदान किया.
He appeared in Ayodhya as Lord Sri Ramchandra and performed so many wonderful pastimes.
और अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर बहुत सुंदर लीलाएं की.
And ultimately he destroyed the demon Ravana.
और अंततः उन्होंने राक्षस रावण का वध किया.
And then he appeared as the son of Vasudev living at the house of Nanda Maharaj and performed the most blessed and beautiful pastimes of Vrindavan.
और वही नंद महाराज के सुपुत्र के रूप में प्रकट होकर बहुत सुंदर लीलाएं की वृंदावन में.
That same supreme personality of Godhead has now appeared as a young Brahmin scholar in Navadvip Dham.
वही भगवान जो है एक नौजवान ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए हैं.
And only by the grace of the Lord can one understand this highest and purest of all truths.
और इस सत्य को जो है भगवान की कृपा के द्वारा ही तुम जान सकते हो.
And then Goddess Saraswati told him, "To become the greatest of all scholars of the world is not the real result of the chanting of the mantra that I gave you."
जो मैंने मंत्र दिया उसका सबसे बड़ा फल ये नहीं है कि सबसे बड़ा विद्वान बनना दुनिया का.
Today you have received the real result of the mantra that I gave you.
मैंने जो मंत्र दिया उसका सही फल जो है आज तुम्हें प्राप्त हुआ है.
you were able to see the Supreme Personality of Godhead, the Lord of the entire creation.
तुम्हें पूरे सृष्टि के स्वामी भगवान के दर्शन प्राप्त हुए.
Now, O Brahman, you go quickly and you take shelter of the lotus feet of the Lord.
हे ब्राह्मण, अब तुम तुरंत जाओ और भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो.
And you surrender to him completely.
और पूर्णतया उनको समर्पण कर दो.
Do not think that this dream is an imagination.
ये मत सोचो कि ये स्वप्न कोई कल्पना है.
The power of the mantra that I gave you have brought you ultimately before the Lord. And this is my greatest blessing to you.
और ये जो मंत्र की शक्ति है जो मैंने तुम्हें दिया उससे तुम्हें भगवान के साथ दर्शन हुए और यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है.
Mother Saraswati then disappeared.
फिर सरस्वती माता जो है अदृश्य हो गई.
And the Brahman woke up.
और ब्राह्मण जागृत हुए.
And immediately upon waking up, before even the sun would rise, he ran to the house of Nimai Pandit.
और तुरंत जो है सूर्योदय से भी पहले वो निमाई पंडित के घर की ओर दौड़े.
And he fell at Nimai Pandit's lotus feet.
और निमाई पंडित के चरण कमलों में गिर पड़े.
Repeatedly offering obeisances.
बार बार प्रणाम करने लगे.
And Nimai, little boy, he said, "What are you doing?"
निमाई एक छोटे बालक होने के नाते बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं?
This is not the activities of a great scholar.
ये बड़े विद्वान के कार्यकलाप नहीं होते.
See, you are the famous erudite Digvijay scholar. Why do you approach me like this?
आप तो बहुत ही मशहूर दिग्विजय पंडित हो जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो. तुम मेरे प्रति ऐसी भावना क्यों रख रहे हो?
And Digvijay Pandit said, "Oh Lord, please hear me. The perfection of all activities and the ultimate goal of life is to worship you."
दिग्विजय बोले कि जो है जीवन की पूर्णता यही है कि आपकी आराधना करना.
You are the supreme Lord Narayan.
आप जो है भगवान हैं.
No one has the potency to perceive your identity except by your causeless mercy.
आपकी अहितु की कृपा बिना कोई व्यक्ति आपको पहचान नहीं सकता.
You have defeated me, and at the same time, you kept my honor intact. No one but the Supreme Absolute Truth, the Personality of Godhead, could do that.
आपने मेरे को परास्त भी कर दिया, फिर भी मेरा मान सम्मान रखा, और भगवान के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता.
I have traveled far and wide, in all directions, and I have defeated anyone, everyone. But in your presence, all of my intellect and all my education disappeared.
मैं जो है पूरे दुनिया में भ्रमण कर चुका हूँ और सबको हरा चुका हूँ, लेकिन आपके सामने मेरी सारी बुद्धि जो है अदृश्य हो गई.
And I don't even know where it all went.
और मेरे को कोई दस्ता ही नहीं मालूम है.
I now realize that this is nothing great for you, because you are the Lord and Master of the Goddess Saraswati, from whom I received all my opulences.
अभी मुझे पता चल गया है कि आप सरस्वती के भी स्वामी हो जिससे मेरे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं.
And it was Mother Saraswati who personally revealed this truth to me.
और ये स्वयं सरस्वती माता ने मेरे को सत्य समझाया है.
Now I surrender to you.
अब मैं आपके शरण में आ रहा हूँ.
I have wallowed in this material existence seeking wealth and pride, but now I understand its futility. The only purpose and goal of life is to worship you and to please you.
अब मैं समझ गया हूँ कि जो जीवन का उद्देश्य यही है कि आपको आराधना करना और आपको प्रसन्न करना.
In this way, the Digvijay Pandit, now becoming meek and humble, like a blade of grass.
अब जो है दिग्विजय पंडित इस तरह से एक तिनके के समान नम्र बन गए.
All of his pride and arrogance forever cleansed from his heart.
का सारा जो अभिमान था मिथ्या वो सब हृदय से साफ हो गया.
He fell at the feet of the Lord.
वो भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा.
And at that time the Lord embraced him.
और तब भगवान ने उनको गले लगा लिया.
And when Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced him, he was completely cleansed from all material attachments and achieved pure loving devotion to the Lord.
और जब भगवान ने उनको गले लगा लिया तो सारे उनके भौतिक आसक्ति नष्ट हो गई और उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई.
And he told him, Brahman, curb your arrogance, worship Krishna, and be kind to every living being.
तो उन्होंने से बताया कि अब तुम अभिमान को त्याग करके कृष्ण की आराधना करो और सब जीवों के प्रति दया रहो.
The Lord explained to him that real knowledge does not make one proud.
भगवान ने समझाया कि सच्चे ज्ञान से व्यक्ति अभिमानी नहीं बनता.
But real knowledge should make one very humble.
सच्चे ज्ञान से व्यक्ति को एकदम नम्र बन जाना चाहिए.
And real knowledge, if it is not connected to the humble devotional service of the Lord, it is all useless.
और अगर जो है ज्ञान भी है, अगर वो भक्ति से संबंधित नहीं है, तो वो बिल्कुल बेकार है.
In fact, our spiritual master used to say, all material qualities are like so many zeros.
हमारे गुरु महाराज बताते थे कि सारे भौतिक योग्यता ये बहुत सारे शून्य के बराबर हैं.
However much education, however much wealth, however much influence that you may have in your life through all of your hard endeavors, at the time of death, it all adds up to one big zero.
आपके पास कितना भी धन हो, विद्वता हो, कितना भी जो है ऐश्वर्य हो, वो मृत्यु के समय जो है सब एक शून्य के बराबर हो जाता है.
But if you connect those zeros to one, to Krishna, that everything that follows that one only increases the value of your life.
लेकिन अगर उसके सामने आप एक जोड़ देते हैं जो कि कृष्ण है, तो फिर जितने भी शून्य होते हैं वो उसको बढ़ाते जाते हैं.
The value of anything in this world only has relevance to the degree it is engaged in the humble service of Lord Shri Krishna.
और जो भी हमारे पास है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत इसी में है कि जब वो भगवान की नम्र सेवा में लगता है.
Sri Gaurasundar told him that conquering the world with mundane knowledge is not the suitable objective for one with true knowledge.
चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया उनको कि ये जो है ज्ञान का लक्षण नहीं है कि आप दुनिया को जीतने का प्रयास करें.
Because when death strikes, the soul is forced to leave this body. And all the education, all the knowledge, all the prestige, and all the wealth is forcibly taken away forever.
क्योंकि जब मृत्यु जो है हमारे ऊपर आक्रमण करती है, तो सारा ज्ञान, सारी विद्वता जो है, सब छीन लिया जाता है.
And we do not know when death will strike.
और हमको पता नहीं है कि कब मृत्यु आक्रमण कर देगी.
Yudhishthira Maharaj said, the most wonderful thing in all of the world is that people all around are dying and everyone thinks that I will not die until after a long time.
Yudhishthira Maharaj batate hain ki sabse adbhut cheez duniya mein ye hai ki sab jagah par log dekhte hain ki logon ki mrityu ho rahi hai, phir bhi hum sochte hain ki hum nikat mein mrityu hamari nahi hogi.
I do not wish to create fear in your hearts. But we should be alert and aware to the reality of this material nature.
हम जो है आपके मन में डर नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन ये जो दुनिया की सत्य है, इसके बारे में हमें जो है सावधान रहना चाहिए.
Padam padam yad vipadam natesham. This world is a place where there is danger at every step.
ये दुनिया एक ऐसी स्थान है जहाँ पर हर कदम पर खतरा ही खतरा है.
Janma, mrityu, jara, vyadi. Birth, old age, disease, and death.
जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये चार चीजें.
Why don't we recognize it and utilize the best part of our life to find that treasure which will not be destroyed at the time of death?
क्यों ना हम जो है उस संपत्ति को पाने का प्रयास करें जो कि मृत्यु के समय नष्ट नहीं होगा.
At this very moment, at this very time in our history, in this very state of Maharashtra, there is a bubonic plague.
अभी इसी समय जो है महाराष्ट्र के जो राज्य में ये प्लेग की बीमारी फैली हुई है.
And very close by in Surat, just a few hours by train, that plague is also raging.
और यहाँ से कुछ ही घंटे दूर सूरत में भी जो है ये प्लेग बुरी तरह फैला हुआ है.
The same type of plague long time ago took place in Rome, Italy.
बहुत समय पहले ऐसा ही प्लेग जो है रोम इटली में आया था.
And according to history, 5,000 people died each and every day of the plague alone.
और इतिहास के अनुसार सिर्फ इसी बीमारी से हर रोज 5,000 लोगों की मृत्यु हो रही थी.
And in the 14th century, this type of plague struck Europe.
और 14वीं सदी में जो है ऐसा ही प्लेग यूरोप में फैला था.
And 1/4 of the entire population of all the countries of Europe died of this plague.
और इसी बीमारी से जो है पूरी जो जनसंख्या थी उसके 25% लोगों की मृत्यु हो गई.
And I'll tell you another fact of history.
और इतिहास का एक और सत्य हम बता रहे हैं.
This year, 1994, is a centennial year.
और ये जो सन 1994 है ये शताब्दी का साल है.
It is the 100th anniversary of the last time the bubonic plague hit India.
और ये बिल्कुल 100 साल पूरे हुए कि इससे पहले जब भारत में ये प्लेग फैला था.
In 1894, some rats with this plague came from Hong Kong onto the soils of Mother India.
और उसमें बताया जाता है कि 100 साल पहले कुछ चूहे जो है वो यहाँ पर भारत से आए हांगकांग से.
And the plague continued without check for 20 years. Beginning 100 years from now, 10 million people of India died of the plague.
और उस 20 साल में जो है भारत के 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई.
And 100 years ago, the population of India was much less than now.
और उस समय जनसंख्या भी अभी से बहुत कम थी.
And 10 million people died.
और उसमें से जो है 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई.
And we're worrying about what's on television tonight.
और हम ये चिंता कर रहे हैं कि आज टेलीविजन में क्या देखने को मिले.
And we're worrying about getting a raise in our job.
और हम सोचते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए.
And we're worried about defeating our competitors in business.
और हम अपने जो है बिजनेस के जो है प्रतिद्वंदी के बारे में सोचते हैं.
And we're worried about impressing some girl or boy and making them like us.
और हम सोच रहे हैं किसी पुरुष या स्त्री को हम आकर्षित करें.
We're worrying about getting a better car.
या ज्यादा अच्छी कार प्राप्त करें.
There's more serious things to worry about.
इससे ज्यादा गंभीर चीजें हैं जिनकी चिंता की जानी चाहिए.
And there is medicines, perhaps.
शायद कुछ दवाइयां भी हैं.
But do you think those medicines can necessarily save you?
क्या ये जरूरी है कि ये दवाई आपको बचा सकती है?
There's only one thing that can save us.
सिर्फ एक ही चीज है जो हमें बचा सकती है.
Krishna.
वो कृष्णा है.
Because in life or death, if we remember Krishna, our life is perfect.
जीवन हो या मृत्यु हो, अगर हम कृष्णा का स्मरण करें, तो हमारा जीवन सफल है.
The only treasure there is in all of this world is in remembering Krishna and chanting his name, because everything else will be taken away at any moment.
कृष्ण का स्मरण करना और उनका नाम कीर्तन करना यही असली संपत्ति है, क्योंकि और सब चीजें छीन ली जाएंगी किसी भी समय.
The same plague, 150,000 people died of in London.
और इस तरह से 150,000 लोगों की मृत्यु हो गई लंदन में.
And not a single one of them thought that it's for me.
और उनमें से किसी एक ने भी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए है.
It doesn't only go to old people.
जरूरी नहीं कि वृद्ध लोगों को ही ऐसी बीमारी होती.
It doesn't discriminate between young or old.
वो नौजवान और वृद्ध में कोई भेद नहीं देखता.
Even the children should take life very seriously.
तो कई बच्चों की भी इस तरह मृत्यु हो गई.
And understand what Prahlad Maharaj told them, that don't wait till you're old to take Krishna consciousness seriously.
बच्चों को ये समझना चाहिए कि जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि वृद्धावस्था तक इंतजार मत करो कृष्ण भावना के।
खोम आराम आचरित प्रज्ञो धारमान भागवताम यहा दुर्लभम मानस जन्म थार अभ्यात्रु गमार्थताम। दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर।
ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है।
नाउ इज द टाइम टू कल्टिवेट आवर स्पिरिचुअल लाइफ।
आध्यात्मिक जीवन अभी तुम्हें विकसित करनी चाहिए।
सो वी शुड नॉट बी फियरफुल of the situations around us.
हमें घबराना नहीं चाहिए स्थिति से जो आ रही है।
Earthquakes, plagues, epidemics, crime, murders, atomic bombs pointed right at this city. We should not be worried about these things.
हमें ये भूकंप हो या बम गिर रहे हो या इस तरह हिंसा हो रही हो इससे ये चिंता नहीं करनी चाहिए।
Although it's all happening.
हालांकि ये सब हो रहा है।
But rather we should just take it as a sign from God that I should seriously chant his holy names.
हमें समझे कि भगवान लक्षण दे रहे हैं कि मुझे गंभीरता से उनका नाम लेना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे
राम हरे राम 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 हरे हरे।
This Nam Sankirtan that has been introduced by Sri Chaitanya Mahaprabhu, it's joyful. It's the greatest pleasure to the soul to chant and to dance with devotees. But it is also the greatest necessity for our spiritual survival in life.
जितने महाप्रभु के द्वारा दिया गया नाम संकीर्तन न केवल आनंददायक है बल्कि वो हमारे जो है जीवन के लिए सबसे आवश्यक भी है।
So if there's anything that we can do to actually prepare ourselves and the world for whatever may happen, it's loudly call out the holy names of Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Then Lord Chaitanya told Digvijay Pandit that don't waste your time with the illusory fame and fortune of this world. Invest your time in worshiping Krishna.
Chaitanya Mahaprabhu ne bataya ki aap apna samay barbaad mat karo ye maya ke jo hai cheezon mein balki Krishna ki aaradhana mein samay lagao.
So Digvijay Pandit, he bowed down again and again and again from the Lord and asked leave of him.
और वो बार बार भगवान को प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा लेने लगा।
And then he renounced all of his royal paraphernalia.
और फिर उसने में सब राज्य जो चीजें थी सबका त्याग कर दिया।
All of his big, beautiful elephants and chariots and decorated horses and all of his beautifully decorated palanquins. And all of those materialistic people who would always praise him and honor him, he gave them all up. And very quietly and alone, he began to travel, always thinking of Krishna, and by the mercy of the Lord, always chanting his holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Shri Gauranga Mahaprabhu ki. And there is a benediction that anyone who submissively hears this story with a sincere heart is guaranteed by the grace of the Lord to be victorious.
और ये भी जो है आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति ये श्रद्धा से इसका श्रवण करते हैं वो विजयी रहते हैं।
श्री गौरांग महाप्रभु की
जय।
एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री।
सबसे बड़ी विजय क्या है?
What did Lord Chaitanya say the greatest victory is? Chaito darpanam arachanam bhava mahadvagni nirvapanam
Shreya kairava chandrika vitaranam vidyavatu jivanam Anandam budivardhanam pratipadam purnamrita svadhanam Sarvatmasna paramparam vijayate Sri Krishna Sankirtanam
Vijayate Sri Krishna Sankirtanam Hari bol.
Hari bol.
This chanting of the holy names of Radha and Krishna cleanse the heart of all impurities and allow us to taste the real pleasure, the real ecstasy that we are always longing for. All victory to the chant, to the congregational chanting of the holy name of Sri Krishna.
Radha aur Krishna ka jo naam sankirtan hai, wo hume ek avsar pradan karta hai ki sachche anand ke anubhav karne ke liye, jiske liye hum abhilashit rehte hain.
Sri Hari Nam Sankirtan ki. So now, let us celebrate this most wonderful moment in history by loudly crying out for the shelter of Krishna's holy name.
अभी ये जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षण है, उसका हम मनाएंगे जोर से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए.
He must have worshipped Goddess Saraswati.
We understand. ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सरस्वती देवी की उपाधि आराधना की होगी.
She is always on the tip of his tongue, ready to give a translation.
वो हमेशा जीवा पर रहते हैं अनुवाद करने के लिए.
But when we started loudly chanting the holy names, he became silent and bewildered.
लेकिन जब जोर से नाम संकीर्तन हुआ तो बीच में शांत हो गए.
Because even Mother Saraswati becomes shy before the holy names of Krishna.
क्योंकि सरस्वती देवी भी भगवान के नाम के सामने जो है चुप हो जाती. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
Teach them, sir.
तो अभी हम नाम संकीर्तन करेंगे और इसमें जैसे कि आप में से कई लोग जानते हैं कि जब महाराज कीर्तन करेंगे तो उस समय नम्र भावना से हाथ जोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को इस मुद्रा में, जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, तो इस मुद्रा से भगवान के नाम को हम अपने हृदय के जो घर है उसमें स्वागत करते हैं और धीरे धीरे जो है कानों से उसका श्रवण करें और अपने पैरों को दाएँ और बाएँ चलाएँ. और उसके बाद जब आप गाएंगे तो अपने दोनों हाथों को ऊपर पुकारिए और जोर से भगवान के नाम को पुकारिए, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था. इतने जोर से पुकारिए कि ये सब जो प्लेग की बीमारी है सब दूर हो जाए.
Demonstrate.